नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट थ्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, हाई परफॉर्मेंस MySQL प्रोवन स्ट्रेटजीज फॉर ऑपरेटिंग एट स्केल, सिल्विया बोत्रोस और जेरेमी डिनली की MySQL संचालन पर केंद्रित तकनीकी पुस्तक है। यह चौथा संस्करण है और इसका उद्देश्य केवल धीमे डेटाबेस को तेज करना नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर विश्वसनीय, मापनीय और संचालित की जा सकने वाली डेटा सेवा बनाना है। पुस्तक का दायरा सेवा स्तर उद्देश्यों से शुरू होकर स्कीमा, इंडेक्स, क्वेरी, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, बैकअप, प्रतिकृति और स्केलिंग विकल्पों तक जाता है। लेखक प्रदर्शन को किसी एक कॉन्फ़िगरेशन मान का परिणाम मानने के बजाय पूरे सिस्टम की संपत्ति के रूप में देखते हैं। इसलिए यह पुस्तक मापने, बाधा पहचानने और परिवर्तन के प्रभाव को जांचने की अनुशासित प्रक्रिया पर जोर देती है। इसका दृष्टिकोण उत्पादन परिवेश के लिए व्यावहारिक है, जहां विलंबता, उपलब्धता, डेटा सुरक्षा और संचालन लागत एक दूसरे से जुड़े निर्णय होते हैं। यह उन इंजीनियरों के लिए विशेष उपयोगी है जिन्हें MySQL को वास्तविक ट्रैफिक और बढ़ती जटिलता के बीच चलाना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सेवा स्तर उद्देश्यों से प्रदर्शन की सही परिभाषा। पुस्तक का एक केंद्रीय विचार यह है कि प्रदर्शन की चर्चा अस्पष्ट शब्दों जैसे तेज या धीमा से नहीं चल सकती। किसी MySQL सेवा के लिए पहले यह तय होना चाहिए कि स्वीकार्य विलंबता क्या है, कितनी उपलब्धता चाहिए, कितना थ्रूपुट अपेक्षित है और किस प्रकार की विफलता व्यवसाय के लिए अस्वीकार्य है। सेवा स्तर उद्देश्य इन्हीं अपेक्षाओं को मापने योग्य सीमा में बदलते हैं। उदाहरण के लिए, औसत प्रतिक्रिया समय अच्छा दिखने पर भी बहुत धीमे अनुरोधों का छोटा हिस्सा उपयोगकर्ता अनुभव या डाउनस्ट्रीम सेवाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वितरण आधारित माप, कार्यभार का प्रकार और चरम समय का व्यवहार अधिक उपयोगी संकेतक बनते हैं। पुस्तक इस सोच को क्षमता योजना से जोड़ती है। यदि लोड बढ़ने पर किसी संसाधन की सीमा निकट है तो केवल वर्तमान औसत देखकर संतुष्ट होना जोखिमपूर्ण है। मापदंडों को पहले तय करने से टीम अनुमान आधारित ट्यूनिंग के बजाय यह पूछ सकती है कि बाधा कहाँ है और बदलाव ने निर्धारित उद्देश्य पर क्या प्रभाव डाला। यह ढांचा प्रदर्शन, विश्वसनीयता और लागत के बीच होने वाले समझौतों को भी स्पष्ट करता है। इस प्रकार डेटाबेस अनुकूलन एक अलग तकनीकी गतिविधि नहीं रहता, बल्कि सेवा की उपयोगकर्ता और व्यावसायिक आवश्यकताओं से जुड़ा संचालन निर्णय बनता है। दूसरा, स्कीमा, इंडेक्स और क्वेरी में डेटा पहुंच का नियंत्रण। MySQL में अनेक प्रदर्शन समस्याएं सर्वर की शक्ति से नहीं, डेटा तक पहुंचने के तरीके से पैदा होती है। पुस्तक स्कीमा डिजाइन, इंडेक्स और क्वेरी डिजाइन को एक संयुक्त विषय की तरह रखती है, क्योंकि किसी एक में लिया गया निर्णय दूसरे की उपयोगिता बदल देता है। उचित इंडेक्स का उद्देश्य केवल खोज को तेज करना नहीं है, बल्कि उन पंक्तियों और पृष्ठों की संख्या घटाना है जिन्हें इंजन को पढ़ना, छांटना या जोड़ना पड़ता है। इसी कारण क्वेरी की शर्तें, जोड़ का क्रम, सॉर्टिंग और चुने गए कॉलम महत्वपूर्ण होते हैं। जरूरत से अधिक या अनुपयुक्त इंडेक्स लिखने के काम को महंगा कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसर्ट, अपडेट या डिलीट के साथ इंडेक्स भी संभालने पड़ते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक संदेश यह है कि इंडेक्स को लोकप्रिय नियमों से नहीं, वास्तविक क्वेरी पैटर्न और निष्पादन योजना से आंकना चाहिए। निष्पादन योजना बताती है कि ऑप्टिमाइजर किस पहुंच पथ को चुन रहा है और अनुमानित या वास्तविक काम कहां बढ़ रहा है। स्कीमा के डेटा प्रकार, कुंजी संरचना और संबंध भी संग्रहण, तुलना तथा लॉकिंग के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए बेहतर क्वेरी केवल वाक्य रचना की सफाई नहीं है, वह ऐसा डेटा पहुंच पैटर्न बनाना है जिसमें आवश्यक परिणाम कम से कम अनावश्यक पढ़ाई, अस्थायी काम और प्रतिस्पर्धा के साथ प्राप्त हों। तीसरा, सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर की संयुक्त ट्यूनिंग। पुस्तक सर्वर ट्यूनिंग को कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ मान बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में पेश नहीं करती। MySQL का व्यवहार मेमोरी, CPU, डिस्क इनपुट आउटपुट, नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम की संसाधन नीतियों से मिलकर बनता है। इसलिए किसी धीमेपन का कारण पहचानना पहले आवश्यक है। यदि कार्यभार डिस्क पढ़ाई से सीमित है तो केवल अधिक प्रोसेसर जोड़ना लाभ नहीं देगा। यदि मेमोरी दबाव के कारण कैश प्रभावी नहीं है या सिस्टम स्वैपिंग की ओर जा रहा है तो क्वेरी स्तर की मामूली ट्यूनिंग पर्याप्त नहीं होगी। InnoDB की मेमोरी संरचनाएं लॉगिंग और फ्लशिंग व्यवहार टिकाऊपन तथा लिखने की विलंबता को प्रभावित करते हैं। इनके लिए चुनी गई सेटिंग्स को डेटा आकार, लेखन दर और पुनर्प्राप्ति की जरूरत के संदर्भ में जांचना चाहिए। हार्डवेयर का चयन भी कार्यभार पर निर्भर है, क्योंकि यादृच्छिक पढ़ाई, भारी लेखन और कम विलंबता वाले लेनदेन अलग दबाव बनाते हैं। पुस्तक मैट्रिक्स और निरीक्षण को इस निर्णय का आधार बनाती है। लक्ष्य यह नहीं कि हर संसाधन 0% व्यस्त हो, बल्कि यह समझना है कि संतृप्ति किस संसाधन पर है और क्या वह उपयोगकर्ता को दिखने वाली सीमा तोड़ रही है। इस समग्र दृष्टि से टीम अंधाधुंध संसाधन बढ़ाने के बजाय सही परत पर सुधार कर सकती है। चौथा, बैकअप, प्रतिकृति और पुनर्प्राप्ति को प्रदर्शन से जोड़ना। उत्पादन डेटाबेस में उच्च प्रदर्शन का अर्थ केवल तेज पढ़ना और लिखना नहीं है, डेटा खोने, प्राथमिक सर्वर विफल होने या गलती से हुए परिवर्तन के बाद सेवा कितनी जल्दी और कितनी विश्वसनीयता से लौटती है, यह भी प्रदर्शन का संचालनात्मक पक्ष है। पुस्तक बैकअप और प्रतिकृति को इसी व्यापक संदर्भ में रखती है। बैकअप तभी उपयोगी है जब उसे बहाल करने की प्रक्रिया, समय और डेटा की पूर्णता का परीक्षण किया गया हो। केवल बैकअप फाइल का मौजूद होना पुनर्प्राप्ति की गारंटी नहीं देता। प्रतिकृति पढ़ने का भार बांटने, उपलब्धता बढ़ाने और आपदा पुनर्प्राप्ति में सहायक हो सकती है, पर उसके साथ प्रतिकृति विलंब, असंगति के जोखिम और फैलोवर की जटिलता भी आती है। लेखन के बाद तुरंत पढ़ने वाले अनुप्रयोगों में प्रतिकृति पर पढ़ने का निर्णय विशेष सावधानी मांगता है, क्योंकि प्रतिकृति पीछे हो सकती है। इसी तरह फेलोवर योजना में यह स्पष्ट होना चाहिए कि नया प्राथमिक कौन बनेगा, एप्लीकेशन कनेक्शन कैसे बदलेंगे और डेटा की स्थिति कैसे सत्यापित होगी। पुस्तक का महत्व इस बात में है कि वह इन व्यवस्थाओं को अलग प्रशासनिक कार्य नहीं मानती। बैकअप की लागत, प्रतिकृति का दबाव और पुनर्प्राप्ति का समय सभी सामान्य उत्पादन कार्यभार और सेवा स्तर उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। टिकाऊ संचालन के लिए इन्हें नियमित परीक्षण और स्पष्ट प्रक्रियाओं के साथ डिजाइन करना आवश्यक है। अंत में स्केलिंग निर्णयों में प्रॉक्सी, प्रतिकृति और विटेस की भूमिका। जब एक MySQL सर्वर की सीमा निकट आती है, तब स्केलिंग का उत्तर हमेशा अधिक शक्तिशाली मशीन नहीं होता। पुस्तक प्रतिकृतियों, प्रॉक्सी परतों और विटेस जैसे विकल्पों के माध्यम से यह समझने में मदद करती है कि बढ़ते कार्यभार को कैसे बांटा जा सकता है। रीड प्रतिकृतियां पढ़ने का भार अलग कर सकती है, लेकिन वे लेखन क्षमता को अपने आप नहीं बढ़ाती और प्रतिकृति विलंब का प्रश्न बना रहता है। प्रॉक्सी SQL जैसी प्रॉक्सी परत कनेक्शन प्रबंधन, क्वेरी रूटिंग और ट्रैफिक नियंत्रण में उपयोगी हो सकती है। फिर भी वह एक अतिरिक्त प्रणाली है, इसलिए उसकी उपलब्धता, कॉन्फ़िगरेशन और निरीक्षण भी संचालन का हिस्सा बन जाते हैं। विटेस का महत्व विशेष रूप से वहां है जहां डेटा को शार्ड में बांटकर क्षैतिज रूप से बढ़ना आवश्यक हो। शार्डिंग से एकल सर्वर की संग्रहण और लेखन सीमा से आगे जाना संभव होता है, किंतु एप्लीकेशन पहुंच पैटर्न, शार्ड कुंजी, क्रॉस शार्ड कार्य और संचालन प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाते हैं। पुस्तक का संतुलित संकेत यह है कि स्केलिंग संरचना वास्तविक बाधा और भविष्य के कार्यभार से मेल खानी चाहिए। समय से पहले जटिल वितरित ढांचा अपनाना उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना स्पष्ट सीमा के बाद भी एकल सर्वर पर टिके रहना। सही चुनाव मापन, डेटा मॉडल और विफलता सहनशीलता की जरूरत से निकलता है। निष्कर्ष में, हाई परफॉर्मेंस MySQL उन डेटाबेस प्रशासकों, बैकएंड इंजीनियरों, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरों और तकनीकी नेतृत्वकर्ताओं के लिए सबसे उपयोगी है जो MySQL को उत्पादन में चलाते हैं या बड़े कार्यभार के लिए तैयार कर रहे हैं। यह शुरुआती स्तर की केवल SQL सीखने वाली पुस्तक नहीं है, हालांकि जिन पाठकों को MySQL के मूल विचार ज्ञात है, वे इससे अपनी समझ को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक धीमी क्वेरी, संसाधन संतृप्ति, प्रतिकृति, विलंब या क्षमता सीमा जैसी समस्याओं को अलग अलग लक्षणों के बजाय संबंधित सिस्टम संकेतों की तरह देखना सीखता है। पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि प्रदर्शन सुधार का कोई सार्वभौमिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। सही समाधान कार्यभार, डेटा मॉडल, टिकाऊपन की अपेक्षा और उपलब्धता लक्ष्य पर निर्भर करता है। समान श्रेणी की कई पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर व्यापक संचालन दृष्टि है। यह केवल इंडेक्स या क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सेवा स्तर उद्देश्य, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैकअप, फेलओवर, प्रतिकृति और आधुनिक स्केलिंग परतों को एक ही निर्णय ढांचे में रखती है। लेखकों का उत्पादन अनुभव विषय को वास्तविक संचालन की चिंताओं से जोड़ता है। पाठक को तैयार नुस्खों की सूची के बजाय मापने, कारण खोजने, बदलाव सत्यापित करने और जोखिम समझने की पद्धति मिलती है। इसी कारण यह पुस्तक MySQL आधारित प्लेटफॉर्म की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और विस्तार योजना के लिए उपयोगी संदर्भ बनती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं सिल्विया बोथरोस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।